ओम शांति। संपन्न और संपूर्ण बनने का विशेष पुरुषार्थ करने की ये योग तपस्या भट्टी में आज आदरणीय राजू भाई जी हमारे सन्मुख है। सभी भाई बहने भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत करते, एक बार सभी हाथ हिलाएंगे, भाई साहब का अभिनंदन अभिवादन करते हैं। ड्रामा में ये भी वंडरफुल बात है कि भाई साहब भी आज ही बाहर सेवा के चक्कर पे गए हुए थे और आज ही पहुंचे हैं। तो आप सभी बहुत भाग्यशाली है जो सभी बाबा के वरिष्ठ भाई बहनों के क्लास का लाभ मिल रहा है। आदरणीय राजू भाई जी, यज्ञ की आदिकाल से बाबा के अव्यक्त होने के लगभग तुरंत बाद से ही वरिष्ठ दीदियों दादियों की पालना में पलते रहे, यज्ञ की पूरी अथक सेवा करते रहे, कहे दिन रात यज्ञ में सेवा करते रहे। प्यारे बाबा के घर में ही आपने बहुत सी विशेषताएं स्वयं में भरी। दादियों दीदियों के बहुत ही नजदीक की आप आत्मा है और विशेष जो ईश्वरीय महावाक्य हम ब्राह्मणों की जीवन रेखा है, बाबा की मीठी मुरली, तो वर्तमान समय राजू भाई जी की मुख्य सेवा मुरली डिपार्टमेंट के आप वरिष्ठ मुख्य भाई है। दादियों के जो सभी डायरेक्शन, जो पत्र पुष्प, सेवा केंद्रों के प्रति जो विशेष सूचनाएं आदि सब आती है, वो भी भाई साहब ही उन सब का निर्देशन करते हैं। और विशेष बाबा के यज्ञ का जो ग्राम विकास प्रभाग है, जिसमें वर्तमान समय यौगिक खेती पर बहुत विशेष अनुसंधान हो रहा है, तो भाई साहब ग्राम विकास प्रभाग के भी चेयरपर्सन है और पूरे भारत में गांव गांव की सेवा के लिए भी आप दिन रात अथक प्रयास करते हैं। आपके जीवन का अनुभव बाल्यकाल से ही शुरू होता है, लगभग 11-12 वर्ष की किशोर अवस्था से ही आप प्यारे बाबा के यज्ञ में समर्पित है। बहुत नजदीक के बाबा के फूल है और अब तो जो आपके द्वारा क्लासेस की विशेषता है, पीएम टीवी में भी जो पीस ऑफ माइंड बाबा का टीवी आता है, उसमें भी आप बेहद सेवा दे रहे हैं। तो आज हम राजू भाई जी से विशेष, नहीं तो ऐसे हमको अंदर से लगता था कि भट्टी अधूरी रह जाएगी अगर भाई साहब का क्लास नहीं हुआ तो। तो प्यारे बाबा ने बहुत सुंदर ये ड्रामा बनाया है, तो भाई साहब हमारे सन्मुख है और बहुत सुंदर बातें हम आज फिर पक्की करेंगे। विषय है स्व परिवर्तन का आधार, बेहद का वैराग्य। आदरणीय राजू भाई जी के अनुभवयुक्त अमूल्य वचन हम सुनेंगे।
ओम शांति। आज का ये दिन हमारे यज्ञ इतिहास में एक बहुत बड़ा वंडरफुल मोड़ लाने वाला दिन है। बताया होगा आपको 28 जुलाई 1983 दीदी जी ने शरीर छोड़ा और 30 तारीख को आज के इस दिन पर ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। उसके बाद अव्यक्त बाप दादा 30 तारीख शाम को पधारे थे और आगे की कारोबार कैसे चलेगी और दीदी अव्यक्त क्यों हुई, कई राज उन महावाक्यों में बाबा ने स्पष्ट किए थे। दीदी की बहुत सारी विशेषताएं शायद आपको सुनाई गई होंगी क्योंकि दीदी के दिनों में आप आए हैं। विशेष करके दीदी की उपरामता, उनका बेहद का वैराग्य आज के विषय से संबंधित कुछ बातें मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि बाप दादा ने मम्मा की सीट पर दीदी को रखा था 1965 24 जून जब मम्मा अव्यक्त हुई, तो दीदी को सेवाओं से दिल्ली में सेवाएं करती थी, तो बाबा ने दिल्ली से मधुबन में बुला करके रखा, मम्मा की चारपाई पर ही रखा। मम्मा की सारी सेवाओं की जवाबदारी दीदी को सौंप दी। दीदी एक कंट्रोलर थी, यज्ञ की यज्ञ रक्षक कंट्रोलर के रूप में ईश्वरीय नियम और मर्यादाओं में लॉफुल के साथ रमणीकता और गंभीरता के बैलेंस से यज्ञ को यज्ञ निवासियों को बहुत स्नेह की पालना दी। हर प्रकार की ट्रेनिंग दीदी के द्वारा हम सबको मिली, क्योंकि बाबा के अव्यक्त होने के बाद 69 में बाबा अव्यक्त हुए और मैं 71 में मधुबन आया। वैसे तो बचपन बाबा के ही इस ज्ञान के बीच में पला, 4 साल की उम्र में मातेश्वरी जी के द्वारा हमारे गांव में गीता पाठशाला खुली थी 1960 में, पूरा परिवार ही ज्ञान से जुड़ गया। लेकिन जब मैं आया तब बाबा अव्यक्त हो चुके थे मधुबन जब पहुंचा, और बाबा की बहुत वंडरफुल अव्यक्त पालना उस समय चल रही थी। एक एक बच्चे को बाबा व्यक्तिगत रूप से मिलते थे। ये जो बाबा का कमरा है, बाबा की गद्दी, वहां पर ही गुलजार दादी बैठ जाती थी और बाबा आ जाते थे। फिर पूरी पूरी रात हम सब छोटा परिवार, कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार, सौ भी नहीं होंगे 50-60 भाई बहने पूरी रात मिलते थे। एक एक घंटा आधा आधा घंटा बाबा के साथ बैठना, खाना टोली देना, दृष्टि देना, एक दूसरे की साथ सब बातें, सब प्रकार की बातें करना। बाप रूप से पालना क्या होती है वो अव्यक्त रूप में हम सब ने पाई है मधुबन में। लेकिन दीदी जैसे पालनहार बन करके रही, कल जो बाबा कह रहे थे अव्यक्त मुरली में, मास्टर विधाता अर्थात पालनहार, तो दीदी पालनहार थी। सेवाएं करने कराने में तो नंबर वन थी, लेकिन अगर कोई ने सेवा की तो बहुत प्यार से उसकी खातिरी करती थी। एक बार दीदी ने हम लोगों की एक परीक्षा ली कि कल 30-40 का एक ग्रुप आने वाला है और दीदी उनको नेपाली साल देना चाहती है। उस समय नेपाली साल यज्ञ की बहुत प्रसिद्ध थी और उसमें 3-4 तय होती, बहुत पतला कपड़ा होता है, तो हमारे टेलर डिपार्टमेंट को दीदी ने कहा कि तुम अपने मधुबन के साथियों को साथ लेके बैठो, सीधी सीधी सिलाई करनी है तुम काट के देते जाओ और सब भाई मिलके सिलाई करके सुबह तक मुझे मिलनी चाहिए। रात को बोलती है, सुबह तक मिलनी चाहिए। तो 2-3-4 भाई मधुबन वाले गए और सिलाई आती थी थोड़ी बहुत, जो भी रात को ही 40-50 चादरें तैयार की। तो सुबह सुबह दीदी चक्कर लगाती थी पूरे घर में क्लास के पहले ही। तो क्लास के पहले जब गई टेलर डिपार्टमेंट की तरफ, तो भाई लोग रात भर काम करके दरवाजा बंद करके बाहर निकल रहे थे। तो दीदी को ये नहीं था कि इतनी जल्दी इन्होंने 40-50 चादरें सिलाई करके रखी होंगी। तो दीदी कहती है, तुमको काम दिया था मालूम है, याद है? तो भाइयों ने कहा, दीदी वो तो हो गया, इतनी जल्दी हो गया। तो बस दीदी इतनी खुश हुई, कहती है, दीदी के साथ लच्छू दादी रहती थी, तो कहती लच्छू जाओ अभी इनके लिए बादाम की बोरी ले आओ, बादाम की बोरी, इनको बादाम खिलाओ। माना पैकेट बोरी माना पैकेट बोरी माना तो दीदी ने उसी समय बादाम के पैकेट मंगवाए और सब जितने लोगों ने काम किया था सबको अपने हाथ से दिया। हम लोग धोबी घाट करते थे तो रोज गरम गरम हलवा बना के खुद ले आती थी, खिलाती थी सबको। तो दीदी की पालना बहुत वंडरफुल थी जिसके कारण हम सब छोटे छोटे आए लेकिन यज्ञ के अंदर परिवार की तरह से पले। कोई सेवाओं में ये नहीं कहा ये तेरी सेवा ये मेरी सेवा। लेकिन दीदी का बहुत गुप्त पुरुषार्थ अंदर अंदर अपने संपन्नता को प्राप्त करने के लिए था। जैसे मम्मा के अंदर एक लगन लगी अब घर जाना है तो उन्होंने हर घड़ी अंतिम घड़ी कह करके ऐसे व्यतीत की जो किसी घड़ी भी शरीर छूटे तो बाबा के पास मैं संपन्न संपूर्ण बन के जाऊं। इसलिए सदा उपराम रही, न्यारी रही, सब कुछ करते हुए सबकी प्यारी रही। ऐसे ही दीदी भी गुप्त पुरुषार्थ करते करते 82 में जब ये ओम शांति भवन बनना शुरू हुआ तो दीदी धीरे धीरे सब बातों से उपराम होती गई और एक ही बात अब घर जाना है, अब घर जाना है, ये संकल्प इमर्ज हो गए। और जो भी कोई बात करो, कोई भी बात सेंटर्स की सुनाओ या कोई भी प्रॉब्लम हो, कहती छोड़ो इन बातों को, अब घर जाना है, एकदम उपराम हो गई। सेवाएं की सेवाएं छोड़ी नहीं अंत तक, क्योंकि दीदी की सबसे बड़ी सेवा थी बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी ने बाबा के पत्रों का, जो बाबा पत्रों का उत्तर देते थे, दीदी ने वो सेवा अपने हाथ में ली। सभी पत्र जितने भी आते थे सबका उत्तर, क्लास के तुरंत बाद बैठना और 10-11 बजे तक सारी पोस्ट क्लियर करना, उसके बाद नाश्ता होता था। तो दीदी के साथ मेरा भी पार्ट शुरू हुआ क्योंकि मैंने दीदी की राइटिंग पढ़ी, क्वेश्चन आंसर निकालना शुरू किया, पोस्ट में मदद करना शुरू किया। तो इसलिए दीदी के साथ रहने का और साथ में बैठने का, उनकी शिक्षाओं को सुनने और धारण करने का बड़ा अच्छा चांस मिला। लेकिन दीदी धीरे धीरे ऐसे उपराम हुई जो कोई भी इंटरेस्ट जैसे नहीं होता। प्रॉब्लम शरीर की कोई नहीं थी। एक दिन वैसे अमृत वेले 4 बजे योग खुद ही कराती थी, हिस्ट्री हाल ही था दीदी के समय, बाद में बन गया था, ओम शांति भवन बनना बाद में शुरू हुआ, उद्घाटन करके गई। 83 फरवरी में ओम शांति भवन का उद्घाटन हुआ और जुलाई में दीदी अव्यक्त हो गई। लेकिन दीदी ने अमृत वेले योग कराते एक दिन अचानक बाथरूम में गई तो थोड़ी सी चक्कर आई और टक्कर लगी थोड़ा यहाँ सिर में। तो सबने सोचा अभी उम्र बड़ी हो रही है, करीब 70 साल की होगी, तो आंखों का चश्मा या कुछ ऐसा कारण होगा जो चक्कर आया, चेक कराना चाहिए। तो अपने पास तो हॉस्पिटल नहीं था तो बॉम्बे में दीदी को चेक कराने के लिए भेजा गया। चेक कराते हुए डॉक्टर ने कहा दीदी की आंखें तो इतनी कमजोर नहीं है, चक्कर का कारण आंखें नहीं है, लेकिन एक छोटा सा ट्यूमर है ब्रेन में जो आंखों को रोशनी देता है, सप्लाई करता है ब्लड, उसमें एक गांठ है छोटी सी और बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने ऐसे सरल रीति से बोला, फिर भी दीदी उपराम थे इसलिए थोड़ा सा सबको लग रहा था पता नहीं क्या होगा। तो सब दादियां बाबा खुद भी बॉम्बे में दीदी को विदाई देने के लिए आए थे। दीदी जब छुट्टी लेके गई हॉस्पिटल में और वो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद दीदी कोमा में चली गई। फिर कुछ दिन हॉस्पिटल में रही और वहीं शरीर छोड़ दिया। तो जो ब्राह्मण परिवार थे उनके अंदर एक हलचल थी कि डॉक्टर ने अगर इतना बड़ा केस था, इतनी बड़ी बात थी तो बताया क्यों नहीं, और बताता तो हम दीदी का ऑपरेशन यहाँ नहीं कराते, हम बाहर कराते। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर जैसे कई प्रकार के प्रश्न होते हैं इसी प्रकार से हलचल थी। तो बाबा जब आए 30 तारीख को तो बाबा ने बड़ी अच्छी मुरली चलाई और कहा कि बच्चे न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है, डॉक्टर का नाम भगवती था। बहुत युक्ति से बाबा ने न भगवान का दोष है न भगवती का दोष है और बाबा को ऐसे अनर्य रत्न एडवांस पार्टी के लिए ले जाने हैं, इसलिए बाबा ने उनको बुला लिया। दीदी आपकी भी प्यारी थी तो बाबा की भी प्यारी है, इसलिए संकल्प नहीं चलाओ। बाबा को पता है कैसे किस बच्चे को कहाँ सेट करना है। ऐसे करके बाबा ने उस वायुमंडल को शांत कर दिया, हलचल खत्म की। लेकिन करीब 5-6 महीने से पूरा ही 83 शुरू हुआ और दीदी ने हर बात में, जब कोई काम के लिए जाओ, अरे छोड़ो इन बातों को, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, बिल्कुल उपराम हो गई थी। करती सब कुछ थी, कोई काम छोड़े नहीं, लेकिन सब कुछ करते हुए जैसे कहते हैं सब लगाव छूट जाते हैं। जब हलवा पक जाता है तो क्या होता है, तला छोड़ देता है। तो आत्मा जब संपूर्ण संपन्न बन चुकी है तो कोई भी तले में कहीं भी, न देह में, न संबंधों में, न सेवाओं में, सब विस्तार समेटे हुए। तो ये बेहद की वैराग्य वृत्ति, उपराम वृत्ति थी जो दीदी संगम युग के पाठ से संपन्न बन करके वतन में चली गई, बाबा के साथ एडवांस पार्टी की सेवा में निमित्त बनी। मम्मा के भी यही शब्द थे, अब अंतिम घड़ी है, हुकुम ही हुकुम चला रहा है, कोई अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं, जो कराए जैसे कराए। तो बाबा अपने बच्चों को कहता है कि ये समय जो है अंतिम समय है, और अंतिम समय प्रमाण अगर हम अपने स्व में परिवर्तन करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ आप सबने 3-4 दिन मधुबन की इस वरदान भूमि में बहुत अच्छी अपने चेकिंग अवश्य की होगी, क्योंकि जब एकांत मिलता है तो ज्ञान का दर्पण, बाबा का दर्पण हमारे सामने होता है। जैसे दर्पण के आगे जाते ही अपने दाग दिखाई देने लगते हैं, कोई भी कहीं भी चेहरे पर या वस्त्रों पर दाग होता है तो फट से पता चलता है और उसको ठीक किया जाता है। ऐसे ही बाबा के घर में और मधुबन की इस वरदान भूमि में जब कोई आते हैं तो बाबा के कमरे में, एकांत में, भट्टी की क्लासेज में बैठते हैं तो उनको अपने अंदर के दागों का पता चलता है। पता तो चल जाता है, चेक कर लेते हैं, जान भी जाते हैं कि ये मेरी अंदर की अपनी कमजोरी है। और बाबा हमेशा कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी है जो देह अभिमान के द्वारा उत्पन्न हुई। जड़ तो देह अभिमान ही है, लेकिन उस देह अभिमान के कारण जो आत्माएं एक दूसरे के नाम रूप में फंस जाती है, प्रभाव में आ जाती हैं, लगाव झुकाव में आ जाती हैं, जब तक कोई का आंतरिक वैराग्य नहीं है तब तक इस लगाव झुकाव की माया से बचना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। हम सब 84 जन्म इस देह के साथ रहे हैं और 84 जन्म ही आत्मा को संबंध मिले हैं, संबंधों में बहुत स्नेह भी हुआ है, समीप भी आए हैं, और जितना देह अभिमान बढ़ता गया उतना विकृतियां और विकारों की उत्पत्ति होती गई संबंधों में आने से। इसलिए कहीं न कहीं संगम युग पर जब आपस में हम समीप आते हैं तो इन विकारों की उत्पत्ति होती है और वो कुछ न कुछ लगाव झुकाव प्रभाव दबाव के रूप में आत्मा को अपनी तरफ खींचती है। जब तक कोई को आंतरिक वैराग्य नहीं आया है, ऊपर का वैराग्य तो बाबा उसको कहते हैं शमशानी वैराग्य, शमशानी वैराग्य तो कभी न कभी हर एक को आता है थोड़ा बहुत, लेकिन उसी समय आता है उसके बाद प्राय लोप हो जाता है। कोई को देखे, कभी कोई बहुत पैसा कमाता है, बहुत नामाचार होता है, बहुत बड़े पद पोजीशन पर होता है, बहुत रोबदार होता है, और अचानक शरीर छूट जाता है और जब उसका संस्कार करने ले जाते हैं तो उसको देख करके हरेक को वैराग्य आता है, बेचारे ने कितना क्या क्या किया, क्या क्या किया, कितना इकट्ठा किया, कितने संबंध बनाए, कितना उल्टा सीधे काम किए, और ये ऐसे ही कुछ लेके नहीं जा रहा है, ऐसे चला जाएगा, हमारा भी ऐसे ही हो जाएगा। उसको देख करके कई बार वो वैराग्य आता है, लेकिन बाबा कहता है वैराग्य थोड़े समय के लिए वहां आता है, वहां सोचता है अब हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे, और बाहर आकर के जब देखता है तो सब मौज लगी पड़ी है, माया की मस्ती में सब मस्त हैं, तो वहां की वहां रहे, भूल जाता है वो शमशानी वैराग्य, वहीं तक रह जाता। संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को शुरू से ये कहता है गई की दुनिया गई, गई की गई, बच्चे ये अभी अंतिम सांस ले रही है। चित्र भी बना दिया बाबा ने एक कुंभकर्ण का कि सृष्टि अंतिम सांस ले रही है, अब जागो। ये वैराग्य वृत्ति की निशानी है, ये स्मृति रहे कि संसार असार है, इसमें कोई भी सार नहीं है, और ये गई की गई। इस कलयुग की कोई भी न वस्तु आकर्षण करे न व्यक्ति आकर्षण करे, संसार में रह रहे हैं लेकिन संसार अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर रहा है, कर सब कुछ रहे हैं लेकिन करते हुए भी कर्तापन के भान से मुक्त हैं। तो वैराग्य वृत्ति की कई निशानियां हमारे जीवन में दिखाई देती हैं। सबसे पहली निशानी, कोई भी कर्म इंद्रियों की आकर्षण आत्मा को आकर्षित न करे, चेक करना। जब तक कोई भी आकर्षण देखने की, सुनने की, बोलने की, खाने की, घूमने की, सैर करने की, किसी भी प्रकार की आकर्षण में आत्मा आकर्षित है। एक और कह रहे हैं संसार में कोई सार नहीं है। हम लोग कहीं जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें, अच्छे अच्छे स्थान होते हैं, हम जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब ये देखो ये देखो ये देखो, दिखाने के लिए बड़े प्रयास करते हैं, और हम कहते हैं कुछ नहीं रखा, हम अपने ब्राह्मण परिवार से मिलने आए हैं, हम अपनी क्लास को देखेंगे, अपने सेवा स्थानों को, अपने तीर्थ स्थानों को देखेंगे, हमें कुछ दुनिया की चीज नहीं देखनी। तो कहते नहीं, एक बार आए हो एक बार तो देख लो। मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया गया, एक बहुत प्यार भाई बहनों का इमर्ज हुआ, तो एक ही सीन सवे दिन में भी दिखाई, फिर रात को आए कि नहीं रात को देखो। मैंने क्यों, रात को और दिन में क्या अंतर होता है? कहता रात की जो शोभा है ना लाइटिंग की, वो बहुत अच्छी होती है। तो वही चीज सुबह भी दिखा के लाए, फिर रात को भी लेके गए, जबरदस्ती घुमा रहे हैं इधर से उधर दिखा रहे हैं, फिर कब आओगे आप? तो ऐसे कई चीजें दुनिया की हैं जो व्यक्ति को बहुत आकर्षित करती हैं। संसार आजकल बाबा कहते हैं ना माया का पॉम्प है, एक तरफ बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो दूसरी तरफ माया ने इस कलयुग को स्वर्ग बना दिया है, उसको देखने के लिए उसकी बड़ी दिल होती है, आकर्षण होते हैं। तो बहुत अंदर से चेक करना चाहिए, अगर मेरे अंदर वैराग्य वृत्ति है कि संसार असार है, इसमें कोई सुख नहीं है, तो वैराग्य वृत्ति वाली आत्मा को कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती, कोई भी कर्म इंद्रियां आकर्षित नहीं कर सकती। भले वो देखेगा सुनेगा, लेकिन देखते हुए भी जैसे कोई रस नहीं है, देख नहीं रहा है, कोई इतना इंटरेस्ट में नहीं आ जाएगा जो उसके पीछे फंस जाए, उसके बिना न रह सके। तो बाबा कहता है एक तो संसार को देखते हुए भी नहीं देखो, ये सब जाने वाला। कभी कभी जब देखते हैं साक्षी होकर के इतना बड़ा दुनिया का विस्तार, और ये ऐसे ही सब जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब दृश्य बाबा के मुरलियों के आधार से भी सामने लाते हैं कि बाबा कहते बच्चे ये तिलसम की दुनिया है, जादू की जैसे दुनिया होती है, ये गई की गई, तो इतना बड़ा विश्व ऐसे कैसे समाप्त होगा, कैसे प्रकृति के तांडव नृत्य होगा, कैसे एटॉमिक बॉम्ब्स का असर यहां तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संसार ऐसे चला जाएगा, कहां जाएगा कैसे जाएगा। तो देख करके भी लगता है कि सब जाने वाली दुनिया है, तो वैराग्य आ जाता है, क्योंकि वैराग्य के बिना त्याग नहीं होता। दुनिया में भी कोई ने अगर कोई चीज का त्याग किया है, कोई ने घर को छोड़ा, कोई ने साधनों को छोड़ा, परिवार को छोड़ा, तो उसके पीछे पहले उनको वैराग्य आया, और वैराग्य के बाद कुछ अच्छा नहीं लगा, छोड़ के चले गए। बाबा कहता है वो संग गए हैं तो दुनिया में ही, छोड़ के कहां गए? वहां जाकर के भी अगर बुद्धि खींच रही है, कोई चीज याद आ रही है, तो भी वो त्याग नहीं हुआ। हम संसार में रहते, परिवार में रहते, समाज में रहते हुए भी अगर बुद्धि से त्याग कर देते हैं, कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं करती है, तो हम कह सकते हैं मुझे तो इससे बेहद का वैराग्य है। कोई भी विकार, कोई भी कर्म इंद्रियों की चंचलता आत्मा को आकर्षित न करे। वैराग्य का एक दूसरा अर्थ भी हम बताते हैं कि वैर और राग दो शब्दों से वैराग्य बना, न किसी से वैर है न कहीं किसी में राग है। राग माना लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण। न राग है न द्वेष है, न ईर्ष्या है न नफरत है। अगर ऐसी भावनाएं रहती, सम दृष्टि बन जाती है सबके बीच में रहते हुए, सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई मुझे आत्मा को प्रभावित न करे। कई बार अच्छाइयां इतना प्रभावित कर देती हैं, ये व्यक्ति बड़ा अच्छा है, इसके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, ये बहुत अच्छा स्नेही है, बहुत अच्छा सहयोगी है, बहुत अच्छी इसकी वाणी है, बहुत अच्छा इसका व्यवहार है, और अच्छा अच्छा कह करके व्यक्ति को अपने में खींच लेते हैं, और वो व्यक्ति की याद अंदर अंदर लगाव और झुकाव का रूप ले लेती है। वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं संगम युग पर किसी के लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं आती। लगाव के चिन्ह जो दिखाई देते हैं कि उस व्यक्ति की इतनी आकर्षण रहती है। एक जगह में गया था, एक बहुत पुराना भाई था, अभी 15 दिन पहले ही, बहुत पुराना कुमार था, सूक्ष्म एक बहन से थोड़ा सा लगाव था उसका। क्लास के बीच में अगर वो आ जाती है तो उसकी तरफ देखेगा, उससे बात करने की कोशिश करेगा, उससे अलग से कुछ न कुछ जाके लेन देन करेगा। ये लगाव के सब चिन्ह दिखाई देते हैं। और वर्तमान समय अगर बाबा कहते हैं अंत काल में कोई की स्मृति आ गई, बुद्धि चली गई, तो क्या गति होगी, इस पर ध्यान देना। अंत मति सो गति, कितना भी कोई अच्छा पुरुषार्थ करे, लेकिन अंत समय शरीर छूटने के समय अगर कोई देहधारी की याद आ गई तो उसका जन्म कैसा होगा। इसलिए बाबा अपने बच्चों को कहता, बच्चे अंदर का वैराग्य वृत्ति, अंदर की वैराग्य वृत्ति से आपके जीवन में सब प्रकार का वैराग्य से त्याग आ जाएगा, परिवर्तन दिखाई देगा। तो हम सबको वैराग्य वृत्ति से पहले अपनी दृष्टि का परिवर्तन करना, जिसके लिए बाबा इतनी मेहनत कर रहे हैं। कल की बाबा की मुरली सुनते आप सबको आया होगा, बाबा कहता अभी भी बच्चों से सारे दिन में कम से कम 15-20 भूले हो जाती हैं। अभी तक बच्चे सिविलाइज्ड नहीं बने हैं, क्रिमिनलाइज्ड हैं, कोई वेला बन पाता है, बहुत मेहनत है। साकार बाबा ने बच्चों को थोड़ा सा आश्वासन देके टिकाया, बच्चे कभी मेहनत है। अव्यक्त बाबा ने इसको बिल्कुल खारिज किया कि बच्चे नहीं, संपन्न और संपूर्ण बनना है तो अपनी दृष्टि को बिल्कुल प्योर शुद्ध बनाओ। जब तक इस देह को हमने विनाशी नहीं समझा, जब तक ये नहीं आता है कि ये तो बिल्कुल हड्डी मांस का पुतला है, इसके अंदर जो रहने वाली चैतन्य शक्ति है आत्मा, जब तक वो भान नहीं, वो स्मृति नहीं है, तब तक सिविलाइज्ड नहीं बन सकते, बहुत बहुत पवित्र दृष्टि नहीं बन सकते। इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है। आत्मा इस शरीर से अलग है। गीता का पहला पाठ विधि है और अंतिम पाठ उसकी सिद्धि है। पहला पाठ है कि अपने को आत्मा समझो, मन मना भव, अशरीरी भव। अशरीरी बन करके तुम मन को मेरे में लगाओ, लेकिन उसके लिए विधि है। ये विधि अपनाने से सिद्धि मिलती है कि आप स्मृति लब्धा नष्ट मोह बन जाएंगे। वैराग्य वृत्ति से मोह नष्ट हो जाता है। किसी भी देहधारी में मोह का अंश न रहे, वो चेक करना है कि कोई भी किसी भी रूप में मुझ आत्मा को अपनी ओर आकर्षित न करे। अगर करता है तो चेक करो, चेकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि चेकिंग के बिना चेंज किया नहीं जा सकता। कई लोग चेक करते हैं लेकिन चेक करके कई निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, सोचते हैं मंजिल बहुत ऊंची है, पता नहीं मैं पहुंचूंगा या नहीं, अभी तक भी मेरी वृत्तियों में विकारों की बहुत उत्पत्ति होती है, बहुत कर्म इंद्रियों की आकर्षण होती है, पुराने संस्कार कहीं न कहीं बार बार इमर्ज हो जाते हैं। अब उसके लिए हमें खुद को सब बातों से वैराग्य रख करके तपस्या करनी होगी। वास्तव में सच्ची साधना ही वैराग्य वृत्ति कहलाती है। वैराग्य वृत्ति ही सच्ची साधना है। साधना माना ऐसे नहीं हम बैठ गए, अपने मन बुद्धि को साध दिया, एकांत में ले गए, लेकिन जब वैराग्य वृत्ति अंदर से आ जाती है, हम देखते हुए भी नहीं देखते, विस्तार में हम नहीं जाते, सब कुछ कर्म कर रहे हैं लेकिन कर्म बंधन का रूप नहीं बन रहे हैं, कर्तापन के भान से हम मुक्त हैं, तो हम सब बहुत गहराई से इस बात को चेक करें, क्योंकि चेक करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, चेक ही नहीं करते हैं तो चेंज कैसे होंगे। इसके लिए जब ऐसे स्थान पर आते हैं, बाबा के पवित्र शुद्ध वातावरण में आते हैं, और अधिकतर आप देखेंगे जब हम बाबा के आगे बैठते हैं, कमरे में जाते हैं, तो जो कुछ अंदर होता है बाबा की याद के साथ साथ वो दर्पण के रूप में सब सामने दिखाई देने लगता है। देख लेते हैं, देखने के बाद कोई निराश उदास हो जाते हैं, कोई सोचते हैं कुछ भी हो जाए इसको मुझे खत्म करके जाना है। तो आप सभी ने इस भट्टी में क्या संकल्प लिया, करेंगे ना कि सिर्फ भट्टी कर लिया, यहाँ की यहाँ रही, ऐसा तो नहीं है ना। आप सब इस स्थान पर आए हैं, जो कोई ऐसी कमियां हो, कहीं भी सूक्ष्म में आत्मा अटकी हो, लटकी हो, चटकी हो, दादी जानकी के बड़े अच्छे शब्द हैं, कहीं लटकी है, कहीं अटकी है, कहीं चटकी है, कहीं न कहीं आत्मा फंसी हुई है, उसको चेक करो। जब तक मम्मा कहती थी आत्मा ऐसे शरीर छोड़े जैसे मक्खन से बाल निकल जाता, कोई तकलीफ नहीं, कोई भी प्रकार की खिंचाव नहीं, बाबा ने ऐसे ही शरीर छोड़ा ना, साकार ब्रह्मा बाबा ने, इतने सब बच्चे साथ, कितना ब्रह्मा बाबा ने गहरा पुरुषार्थ किया होगा कर्मातीत संपन्न बनने का, सब बच्चों की पालना है, इतनी यज्ञ की कारोबार है, इतने स्नेही समीप बच्चे हैं, इतना सारी स्थापना का कार्य संपन्न करना है, लेकिन गुप्त पुरुषार्थ करके अंदर का आंतरिक वैराग्य, सुना होगा आपने, एक डेढ़ साल से बाबा बिल्कुल उपराम हो गए। पहले बच्चे आते थे, बाबा उनसे समाचार लेते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, उनके साथ खेलते थे, बैडमिंटन खेलने जाते थे, जहां शांति स्तंभ बना है वहां पर बाबा, लेकिन उसके बाद जब बाबा उपराम हुए, बच्चों को केवल दृष्टि देते थे, और अमृत वेले का योग, ये जो ऑफिस है, जो ये ऑफिस बने हुए इधर तीन चार, यहाँ एक पहाड़ी थी, उस पहाड़ी पर सुबह सुबह 4 बजे बाबा खड़े हो जाते थे लाइट हाउस बन के, और बच्चे सब सामने ऐसे घेर लेते थे बाबा को, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा बाबा केवल दृष्टि देता था, उपराम हो गया सब बातों से। कमरों में जाते थे बच्चे अंतिम समय में, सवेरे सवेरे पहले जाके गुड मॉर्निंग करते थे, बाबा गुड मॉर्निंग, बच्चे आवाज में क्यों आते हो। तपस्या करने के समय योग करने बैठते थे तो उस समय वो घड़ी जो थी वो चाबी वाली थी, टिक 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 आवाज होती थी, जब बाबा योग करने बैठता था तो टिक टिक की आवाज बाबा को लगती थी, बाबा कहता था बच्ची इस बच्ची को बंद कर दो, माना इतनी एकाग्रता, इतना है ध्यान, ये भी टिक टिक क्यों कर रही है। जो कल परसों की मुरली में था ना, स्त्री जी माना शून्य स्थिति, ये 68 की मुरलियां हैं जो इस समय चल रही हैं। बार बार बाबा गीत बजाना बंद करवा दिया, क्यों बच्चे गीत बजाते हो, गीत की क्या जरूरत है ज्ञान में, ज्ञान में गीत की क्या जरूरत है, छोड़ो इन गीतों को, बंद करा दिया। गुड मॉर्निंग करने की क्या जरूरत, आवाज में क्यों आते हो, क्या जरूरत है, आवाज से परे जाना है। सवेरे सवेरे कोई बच्चे आए हैं, कोई बाबा को कोई बात सुनाए, बच्चे अभी तो बाबा बच्चों के लिए भोजन तैयार कर रहा है, कोई डिस्टर्ब नहीं करो, मनन करना, चिंतन करना, अपने में मग्न हो जाना। कोई बच्चे आते कोई समाचार सुनाते, अच्छा बच्चे सार क्या है इसका, विस्तार को सार में 2 शब्दों में सुना दो, सुन लिया ठीक है सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे उपराम हो गए, न्यारे हो गए, लेकिन किसी को ये पता नहीं चलने दिया कि बाबा अभी संपन्नता के करीब पहुंच गए। लास्ट दिन भी कोई ने ये महसूस नहीं किया कि बाबा अभी जाएगा, और बाबा की फुल तैयारी। सुना होगा संदेशी से पूछवाया बाबा ने, एक साल पहले पूछवाया कि जाओ बच्चे देख के आओ ऊपर वाला बाबा जो तुमको वतन में दिखाई देता है और ये जो साकार बाबा है इसमें दोनों में कितना अंतर है, क्या दिखाई देता है तुमको। तो जब ट्रांस में गई संदेशी तो ऊपर वाले बाबा को नीचे वाले बाबा को देखा तो आके कहती है बाबा वो जो है ना ऊपर बहुत चमकीला है, बहुत सुंदर है, इसमें थोड़ा सा चमक कम है, बस इतना ही बाबा को इशारा मिला, ये चमक बढ़ानी है। कौन सी चमक? प्योरिटी की चमक, एकदम बिल्कुल उपराम, बिल्कुल न्यारा, कहीं भी कोई भी व्यक्ति वस्तु चीजें कोई चीज आकर्षित न करे। अब बाबा ने वो पुरुषार्थ शुरू कर दिया गुप्त रीति से। बाबा ने ये भी कह दिया बाबा तो बाहर नहीं जाएगा, बंदरों के बीच में बाबा भी नहीं जाएगा, बिल्कुल जाना आना सब बंद कर दिया, एकांत में चला गया, तपस्या करना शुरू कर दिया, बच्चों के साथ खेलना बहलना ज्यादा हंसी मजाक सब बंद, बस तपस्या उपराम न्यारा प्यारा सार रूप में स्थित। तो ब्रह्मा बाबा ने एक साल के अंदर ही पुरुषार्थ करके अपने को समान बना लिया और अंदर की वैराग्य वृत्ति थी कि मुझे बनना है। फिर बुलाया संदेशी को, मैं समझता हूं दिसंबर 68 में बुलाया और फिर कहता है अभी उसी संदेशी को बुलाया, जाओ बच्ची फिर देखो इसमें और उसमें क्या अंतर है। तो देख करके आई तो दोनों एक जैसे दिखने लगे। तो बाबा ने कहा बच्ची बताना नहीं किसी को। वो रोने लगी, समझ गई अब बाबा इस आकार में नहीं रहेगा, समान बन गया, संपूर्ण बन गया। तो बाबा ने उसको चुप करा दिया, बच्ची किसी को नहीं कहना। और बाबा फिर अपने आप को कैसे दीदी को दो दिहां दादियां बहुत समीप थी उनको सेवा पर भेज दिया, कहीं ऐसा न हो शरीर छोड़ने के समय इनको रोना आ जाए कुछ हो जाए, उनको बाहर भेज दिया। और दादी प्रकाशमणि जो बॉम्बे में रहती थी पार्टी लेके आई थी, बाबा ने उनको कहा कि बच्ची पार्टी को भेज दो तुम रुक जाओ। दादी को कभी भी बाबा ने मधुबन में रुकने नहीं दिया, पहले आती थी दो दिन में रिफ्रेश हुई, कहती बच्ची बादल भरे ना बरसों जा करके, यहां नहीं रहने दिया। लेकिन उस दिन बाबा ने अचानक दादी को बोला बच्ची पार्टी को वापस भेज दो और आप यहां रुक जाओ। तो दादी ने कहा जी बाबा। पार्टी चली गई 17 तारीख को, 18 तारीख को बाबा को थोड़ी खांसी हुई तकलीफ हुई तो दादी के मुख से निकला बाबा आज आप मुरली सुनाने न जाओ बहुत ठंडी है, मैं आपकी जगह क्लास करा देती हूँ। बाबा ने कहा जी बच्चे जाओ। 18 तारीख वही दिन था जो बाबा ने सवेरे क्लास में मुरली नहीं सुनाई, लेकिन जब क्लास करा के दादी आई तो बाबा ने कहा बच्ची बहुत सारे बच्चों के पत्र आए हैं, बाबा को कोई तकलीफ नहीं है, आज चलो सब बच्चों के पत्रों का उत्तर देना है। बाबा बैठ गए ऑफिस में जाके और सभी पत्रों का उत्तर लिखवाया दादी के साथ बैठ के। और उसके बाद जितनी यज्ञ की कारोबार चल रही थी, कहाँ मकान बन रहे थे, कौन मिस्त्री हैं, कौन आर्किटेक्ट हैं, कौन क्या है, भंडारे में कौन क्या सेवाएं करते हैं, डिपार्टमेंट कैसे चलती हैं, दादी जी का हाथ पकड़ के बाबा ने एक एक चीज गाइड किया। दादी समझ ही नहीं थी ये क्या हो रहा है सब, क्यों बाबा मुझे गाइड कर रहा है, क्यों बता रहा है, ऐसा नहीं है बाबा ट्रांसफर कर रहा है, कुछ पता नहीं दादी को। और सारा दिन बाबा ने सब कार्य पूरे किए, सब कुछ दादी को सिखाया और बताया। और रात को पहले कहता है बच्ची आज बच्चों को सवेरे मुरली नहीं सुनाई, खजाना नहीं दिया बाबा ने, जल्दी बच्चों को बुला लो अभी मुरली सुनाना है। तो 9 बजे वाला क्लास 8:30 बजे ही बुला लिया, सब आ गए, बाबा ने आधा पौना घंटे मुरली सुनाई और उसमें भी यही महावाक्य उच्चारण किए, बच्चे देहमान तो बहुत बड़ा विघ्न है, अभी कहां बाबा देहमानी बना है, कोई भी कोई सारे तक भी पता नहीं चलने दिया कि लास्ट मुरली है। लेकिन गेट पर आके कहता अच्छा बच्चे विदाई छुट्टी, नम्रचित निर्माणचित निरहंकारी बन करके रहना, ऐसे बोल करके और छुट्टी लेके दादी के साथ आया और कमरे में चारपाई पर बैठ करके हाथ में हाथ दिया उड़ गया। वो सीन क्या होगी, अब दादी को शक्ति दे दी इसलिए दादी ने उस सब सीन का सामना किया और फिर 21 तारीख तक बहुत हलचल थी, फिर 21 21 तारीख को बाबा आए और कैसे बाबा अव्यक्त हुए हैं और कैसे कमरा चेंज किया है वो सारी कहानी सुनाई, और उसके बाद कैसे यज्ञ चलेगा आगे। वो 21 जनवरी 69 का दिन था जो यज्ञ में बड़ा परिवर्तन आया। तब से लेकर के हम सबने अव्यक्त बाबा की पालना ली है, आज 50 साल उसको पूरे हुए। गुलजार दादी के माध्यम से बाबा ने बच्चों को सब कुछ सिखा दिया। कल मैं दादी जी से मिलने गया था बॉम्बे, बहुत देर तक दादी से दृष्टि ली। दादी बोलती बहुत कम है, वैसे भी नहीं बोलती थी, ओम शांति किया, जब कोई बात पूछो तो ऐसे ही सारे में। फिर हमने कहा राखी तो बांधो, बहुत दिन हो गए, हम हर साल आपसे राखी बंधवाते हैं। तो दादी को हाथ में राखी दी तो दादी ने यहाँ रख दी। फिर नीलू बहन ने नीचे से बांधी, लेकिन दृष्टि दी, बहुत प्यार से सुना सब बातें। चेहरे से कोई नहीं कहेगा दादी कोई तकलीफ है, भी नहीं कोई तकलीफ। इन बाबा ने उस आत्मा को वहां पर एकदम तपस्या में बिठाया हुआ है, बड़े अच्छे वाइब्रेशन है सेंटर पर, जो भी जाता अनुभव करता है। डॉक्टर्स विशेष दर्शन करने आते हैं, कहते दादी को देख लेते हैं तो हमारे सब काम सिद्ध हो जाते हैं, मिलने आते हैं, दर्शन करने आते हैं। तो ऐसी दादी वहां बैठी है तो उनको भी देखता हूँ, जो बाबा कहता है अंतिम समय के अनुसार अंदर से सब बातों से उपराम हो जाए आप। बड़ी दादी को भी हम देखते, प्रकाशमयी दादी को भी 2 साल तक कैसे आंख बंद कर लिया, इतनी सारी कारोबार पूछती थी।
प्रभु का ध्यान कीजिए।
उस सीन में आपको सुना रहा हूँ, दादी जी जैसे कर्मातीत बनी। तो एक दिन मैं यहाँ से पांडव भवन रोज आता जाता था, सेवा नीचे अधिक और रहने का घर हमारा मधुबन पांडव भवन, तो रोज अप डाउन करता था। तो दादी एक दिन कहती, अच्छा तुम लोगों को कोई तकलीफ होती है यहाँ पर, क्यों नहीं रुकते हो? तो क्या कहें दादी को, तकलीफ होती है, क्योंकि मैंने कहा दो ही बातें कही दादी, दो बातों की तकलीफ होती है। कहती क्या तकलीफ होती है? तो मैंने कहा एक तो भीड़ के अंदर भोजन करने में तकलीफ होती है, इतनी बड़ी लाइन होती है, अगर वीआईपी भंडारे में जाओ तो वीआईपी खड़े हो और मैं बैठ के खा रहा हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता है, और मैं खड़ा हूँ वीआईपी खा रहा है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, कि मधुबन वाले खड़े हैं मैं खा रहा हूँ वो भी उठ जाता है खाता नहीं है। तो एक तो डाइनिंग में जाते हैं तो थोड़ा धक्के लगते हैं, और नहीं जाते हैं लेट जाते हैं तो भोजन नहीं मिलता। दादी अच्छा तुम लोगों को ये तकलीफ तो होती होगी, रियलाइज किया। फिर कहती अच्छा दूसरी क्या तकलीफ होती है, क्यों रोज रोज भाग के जाते हो? मैं दीदी दादी अमृत वेला या बाबा का कमरा हम लोगों के लिए कहाँ है? यहाँ हमारे पास मधुबन में तो बड़ा अच्छा कमरा है, बैठते हैं एकांत में, गुड मॉर्निंग करते। कहती है इतना बड़ा यहाँ बनाया है ना? ना दादी आप एक दिन चल के तो देखो वहाँ का हाल क्या होता है। कि क्या होता है? हमने कोई पांच मिनट एकाग्र होकर के नहीं बैठता है, बैठेगा फिर उठ के भंडारी में कुछ डालेगा फिर बैठेगा फिर बाहर आएगा फिर जाएगा। दादी यहाँ योग नहीं लगता बाबा कमरे में। तो कहती क्या अच्छा क्या चाहिए? मैं दादी एक छोटा सा बाबा का कमरा बनवा दो और एक छोटा सा डाइनिंग हॉल बनवा दो बैठने का। अच्छा बस इतनी बात, इसके कहां तुम रोज ऊपर जाते आते हो? लाओ फोन लाओ, मेरे को कहते फोन लाओ। मैंने कहा नहीं फोन से काम नहीं चलेगा, फोन तो आप कर दोगे वो सुनने वाले भूल जाएंगे। कहते क्या करूं? मैंने कहा दीदी दादी आप एक लाइन लिख दो कि इनको ये दो सेल्वेशन दे दो और नीचे साइन कर दो बीकेपी, ज्यादा नहीं। तो दादी ने कहा अच्छा चलो। उसी समय कागज लिया और लिखा कि देखो ये पांडव जो मधुबन से आते चार पांच, हम लोग रेगुलर आना जाना करते थे, इनके लिए दो साधन बना दो जहां भी हो। मैंने कहा मैं जहां रहता हूं वहां बन सकता है, कमरा है। तो ऐसे दो लिखे शब्द बीकेपी करके साइन कर दिया। मैंने पांच सात कॉपी निकाली और सब कंस्ट्रक्शन इनको इनको दिया और वो दोनों चीजें बन गई। जब बन गई तो वहां रहने लगे। तो कभी कभी मधुबन से आते थे तो एक दिन यहां आए थे मधुबन में, और यहाँ से जब गए तो दादी के पास सीधा ही गए। अच्छा ऊपर गए थे? मैं हाँ दादी ऊपर गए थे। कैसे चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है, पांडव भवन सब ठीक है, पांडव सब ठीक है। क्योंकि दादी तीन साल तक ऊपर नहीं आई, यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी कमी पड़ती थी, उनको सांस की तकलीफ हो गई थी, तो आती थी तो यहाँ रह नहीं पाती थी। तो दादी ने जब पूछा और मैंने सब बातों का जवाब दिया, सब ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, एकदम बोलती कैसे अच्छा है, क्वेश्चन कर दिया। तो मैंने जवाब दिया दादी आप यहाँ बैठे ना आपकी तपस्या से आपके संकल्पों से सारी कारोबार बहुत अच्छे चल रहे। तो मेरे को आंख दिखाती कहती क्या बोला? मेरे संकल्पों से चल रही है? तो दादी आपके संकल्पों से चल रही है, तपस्वी आत्माएं बैठी है, सब काम आप ही चल रहा है, ऑटोमेटिक चल रहा है। मेरे संकल्पों से नहीं सब चल रहा है, ऊपर वाला बाबा के संकल्पों से चल रहा है, तुम उसको भूल गया। अब ये वैराग्य वृत्ति की निशानी है, न मान न नाम न शान, कुछ अपने स्वीकार नहीं किया, सब बाबा के ऊपर, सब बाबा करा रहा है, बाबा का यज्ञ है, बाबा के बच्चे हैं, बाबा का कार्य है, करण करावनहार वो है, हम लोग केवल निमित्त मात्र है। इतना निमित, इतना निर्माण निरहंकारी, जाओ आप बैठ जाओ। मैं तो कभी कभी ऐसे बैठ जाता था जैसे बच्चा माँ की गोदी में बैठ जाता ना, सोफे पे बैठी होती थी ऐसे, कभी ऐसे आंख बंद करके बैठती थी अधिकतर लास्ट में। तो मैं एक दिन जा करके ऐसे बाजू में जाके बैठ गया, कोई नहीं था, अकेले बैठी थी, मैं बाजू में बैठ गया। देखे कब तक आंख खुलती है, फिर भी मैंने हाथ ऐसे हिलाया, मैं दादी ऐसे दिया। हाँ अच्छा अच्छा राजू कुछ काम है क्या? दादी आप क्या पुरुषार्थ कर रही थी? आंख बंद करके आप क्या सोच रही थी? तो कहती बताऊं? हाँ दादी बताओ। तो ऐसे हाथ किया, ऐसे ऐसे हाथ करके कहती है, ये जो हीरा है ना आत्मा का, इस हीरे को मैं अपनी हथेली पर रख के अपने ही नेत्र से देख रही थी, इस हीरे में कोई दाग तो नहीं है। मैंने अपनी चारों ओर से दिव्य नेत्र से हीरे को देखा और मुझे अपने हीरे में कोई दाग दिखाई नहीं दिया। बाबा कहता है बच्ची ये डायमंड बिल्कुल प्योर बन गया है, मेरे को आ गया ये आत्मा कर्मातीत हो गई, बस कोई दाग नहीं दिखाई देता। तो मैं बार बार देखती हूं कि मुझे हीरे में कोई दाग तो नहीं है। इतना गहरा पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ था, सब बातों से उपराम, इतना बड़ा कारोबार, इतनी यज्ञ, इतनी सारी प्रॉब्लम्स की बातें आती, इतनी नीचे ऊपर, लेकिन पुरुषार्थ क्या किया? मैं हीरा कैसा अमूल्य हूं, कोई दाग तो नहीं है, इसकी कीमत कहीं कम तो नहीं हो जाएगी। ये वैराग्य वृत्ति की निशानी है। हम दूसरों को देखते हैं बहुत ध्यान से, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, और उन कमियों को नोट करते करते बाबा कहता है जो दूसरों की कमियों को नोट करेगा वो तो किचड़े का डब्बा बन जाएगा। इसलिए कोई की कमी कमजोरी मुझे नहीं देखनी है। जो मेरी अंदर की कमियां हैं उनको निकालने के लिए मुझे तपस्या करनी है, मुझे एकांत में चले जाना है, अपने आप से बातें करनी है, अपने को सुधारना है। दूसरा क्या करता है मुझे कुछ उससे लेना देना नहीं है। वैराग्य वृत्ति वाली आत्माएं कभी भी दूसरे के पुरुषार्थ, अपने पुरुषार्थ की भेंट नहीं करती, वो साक्षी और दृष्टा बन जाती है। साक्षी हैं, अपने पार्ट को भी साक्षी होकर के देखती हैं, दूसरे के पार्ट को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखते हैं। जैसे दृष्टा देखने वाला अलग है, कर्म करने वाला अलग है। आप सभी कभी कभी अपने चलते हुए संकल्पों को भी साक्षी दृष्टा बन करके देखो, अपने ही दिव्य नेत्र से उस चलते हुए संकल्पों की गति पर नजर दौड़ो। किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन में? जब से मैं ब्राह्मण बना हूं कितने प्योर संकल्प बने हैं, शुद्ध संकल्प बने हैं, कितने विकारों पर मेरी विजय हुई है जो पहले की जीवन थी, इसी से जन्म की। पिछले जन्मों की बातें भले याद नहीं रहती, लेकिन इस जीवन में जो कर्म हुए हैं, जो गलतियां हुई हैं, जो पाप हुए हैं, देह अभिमान के कारण जो भी कर्म हुए हैं, बाबा के बच्चे बने, आत्मा का ज्ञान मिला, बाबा से कनेक्शन जुटा, योग लगा, उसके बाद मुझे आत्मा से कोई भी ऐसे कर्म तो नहीं हो रहे हैं? ऐसे संकल्प विकल्प कितने परिवर्तन हुए हैं? बैठ करके एकदम अपने आप को देखो, अपने हीरे को देखो, कितना वैल्यूबल है। कोई भी प्रकार का लगाव, झुकाव, प्रभाव, किसी भी प्रकार का कोई संस्कार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, कोई में बहुत अटैच है, कोई में बिल्कुल किसी के बिना नहीं रह सकते, किसी से बिल्कुल नफरत है, ये सब बातें हिसाब किताब को बनाती हैं। कहते हिसाब किताब बनते कैसे हैं? चुकते हुए उसकी निशानी क्या है, और बन रहे हो तो उसकी निशानी क्या है? अगर चुकते हो रहे हैं तो संस्कारों के साथ संकल्पों और सपनों में परिवर्तन आ जाएगा, बहुत हल्कापन हो जाएगा, कोई भारी नहीं लगेगा, योग सहज लग जाएगा। चुक्त हो गया, कर्जा था पूरा हो गया, खुशी बढ़ जाएगी, हल्कापन बढ़ जाएगा। जो योग का मूल आधार है वो आधार हमारे जीवन से दिखाई देने लगेगा। खुशी है निरंतर, हल्कापन है, ऐसे लग रहा है जैसे उड़ रहे हैं। जब बैठते बाबा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, शक्ति मिलने लगती है, सकाश मिलने लगती है, बहुत प्यारा न्यारा अनुभव होने लगता है। निशानियां तो कुछ दिखाई देनी चाहिए। विकर्म विनाश हो गए हैं अगर निशानियां नहीं है, वही युद्ध चल रहा है, वही बस संकल्प विकल्प आ रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष बढ़ता जा रहा है, खुशी गायब होती जा रही है, तो विकर्म विनाश हुए क्या? बन रहे हैं तो उसकी निशानी तो है। बार बार खींचेगी बुद्धि, जैसे कोई नाव कहीं बंधी हुई हो और रात भर कोई चप्पू चलाता रहे कि हम बढ़ रहे हैं आगे, सुबह देखेगा जहां थे वहीं खड़े हुए हैं। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी क्या हम वहीं के वहीं खड़े हुए तो नहीं हैं? कितनी हमारी उन्नति हुई है, कितना हमारे संस्कारों में दिव्यता, अलौकिकता, रूहानियत, प्योरिटी आई है, वो चेक करें। अगर वैराग्य वृत्ति है तो उन बातों में कहीं भी राग द्वेष हो ही नहीं सकता। तो साक्षी दृष्टा बनकर के खुद को खुद ही देखो, कोई दूसरा देखेगा नहीं। अभी वो समय खत्म हो गया। हमारे निमित्त थे, दादियां थी, बड़े थे, सब बहुत ध्यान देते थे एक एक बच्चे पर, बहुत लक्ष्य रहता था, इनको ये पुरुषार्थ कराएं, इनको ये पुरुषार्थ कराएं। मुझे याद है कोई भी त्योहार, कोई भी बात आती थी, बुलाती थी मेरे, किधर आओ, ये डायरेक्शन भेजना है, ये भेजना है, ये सोचो, ये करो, आज बाबा का स्मृति दिवस आ रहा, आज मम्मा का दिन आ रहा, आज ये आ रहा है, शिवरात्रि आ रही, कुछ प्रतिज्ञाएं भेजो, कुछ ये लिखो, कोई अच्छी मुरली चल गई बुला लेगी, आओ कमरे में मेरे साथ, तुम इसका चार्ट बनाओ, तुमको इसके लिए ये करो, इसके लिए ये करो, बुला करके सब डायरेक्शन देती थी। वो समय था जो पुरुषार्थ कराने वाली आत्माएं हम सबको दौड़ा रही थी, पुरुषार्थ करा रही थी। अब कोई कहने वाला नहीं है, कोई नहीं कहेगा आप ये करो, करना है तो करो, नहीं करना है तो आप जानो। समय ऐसा आ गया, इसलिए यहां से आप कुछ संकल्प करके जाओ कि हम अपने लिए खुद खुद ही पुरुषार्थ करके अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे। कहीं पर भी कोई लगाव झुकाव है, मैं अपनी रस्सियों को खुद चेक करूंगा और काटूंगा। उसके लिए तपस्या करो। बाबा कहता था अगर कोई अनुभव नहीं हुए हैं तो जिद करो कि मुझे अनुभव करना है। कोई संस्कार को परिवर्तन करना है तो हट करके बैठ जाओ, बाबा इसको मैं आज जला के छोड़ूंगा, क्यों अभी तक मुझे काम विकार तंग कर रहा है, क्यों मेरा ये क्रोध का संस्कार अभी तक नहीं जाता, क्यों अभी तक मेरे को वृत्तियों में लोभ है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, क्या लेके जाऊंगा मैं साथ में, बातें करो। कहां कहां मेरे मुंह की रस्सियां बंधी हुई हैं, कोई पोत्रे धोत्रे लड़के लड़की किसमें है, मोह है और ममता है, या कुछ भी मैं करता हूं अच्छा काम, मेरा नाम हो, मेरी महिमा हो, मुझे कोई पूछे, अहम और बहम कहां तक खत्म किया है। इन सब सूक्ष्म संस्कारों को संस्कार करना है। भट्टी का तो यही अर्थ है कि हम ऐसी भट्टी करें जो ये बीज खत्म हो जाए, बीज जल जाए, ये संस्कारों का जो बीज है, जो विकारों से देह मान से पैदा हो गया, उसको जलाने के लिए तपस्या है और उसकी विधि वैराग्य है। तो हम सब बेहद की वैराग्य वृत्ति, हदें नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि हमने कुछ छोड़ दिया, कुछ हम इससे बात नहीं कर रहे हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं, भाई हमको तो तपस्या करनी है, दिखावा नहीं है, गुप्त रीति से तपस्या चले, बाह्य रूप से जो कार्य कर रहे हैं सब करते चलो, अंतर्मुक्तता और उपरामता को बढ़ाओ, बस ये है वैराग्य वृत्ति। अंदर से आत्मा उपराम है, कोई भी आकर्षण आकर्षित नहीं कर रही, बिल्कुल न्यारी है, साक्षी दृष्टा है। उस स्थिति में बैठ करके अपने आप को देखें, अपने आप को परिवर्तन करें, अपने लिए संकल्प करें, इसको कहा जाता है वैराग्य वृत्ति। दिखाई देगा जो कल था आज नहीं हूं। आप इस भट्टी में आने के पहले जो संस्कार थे, अगर चार दिन के अंदर तपस्या की है तो ये संस्कार यहां से समाप्त हो जाना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, तब कहेंगे हमने भट्टी की तपस्या की है। जैसे थे वैसे ही संस्कार बने रहे और बार बार हमें परेशान करते रहे तो भट्टी में आने से क्या लाभ। इसलिए आप सब इस स्थान पर आए हैं, बाबा की तपस्या भूमि है, वरदान भूमि है, परिवर्तन भूमि है, चरित्र भूमि है। तो इस भूमि के अंदर ऐसे वरदान लेकर के जाना जो हमारे कोई भी साधारण नेगेटिव व्यर्थ संकल्प संस्कार हैं वो सदा के लिए समाप्त हो जाए, ठीक है, तब कहेंगे वैराग्य वृत्ति। अभी 10 मिनट हैं, अगर आपको कोई अच्छे अनुभव हुए हो और आपने संकल्प किया हो तो मैं चाहता हूं कि एक बहन एक भाई आके सुनाए, क्योंकि आज लास्ट सेशन है ना भट्टी का। सुनाएंगे कोई ऐसा सुत संकल्प आया हो, कोई ऐसे अनुभव हुए हो और आप शेयर करना चाहें, दूसरों को प्रेरणा मिले, तो आप आ सकते हैं, वेलकम। सुनाएंगी बहन जी, हाथ आ रही हैं, आइए। कोई भाई भी एक तैयार रहे हैं।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस भक्ति से जो मुझे महसूस हुआ कि हम अब तक बाबा को याद करते रहे, लेकिन जाना क्या, समझा क्या हमने बाबा को? बाबा परमपिता परमात्मा है, लेकिन हमें उससे कितना लगाव है? क्या हमें बाकी से प्यार करते हैं, या सिर्फ हम योग का दिखावा करते हैं, जैसा भाई जी ने भी बताया? तो मेन चीज ये है कि हमें बाबा से इतना प्यार होना चाहिए कि हमारा रोम रोम उनकी याद में भीग जाए। अगर हमारा रोम रोम उनकी याद में भीगता है, याद में हम लवलीन हो जाते हैं, और ये लगे जैसे आज हम कहते हैं हम बच्चों से हमें बहुत प्यार है, बच्चा हमारे, ये हमारे नैनों का नूर है, लेकिन वो नैनों का नूर जब हमारे पास आता है तो हम उसे किसी न किसी चीज से देख करके बहलाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं या आधा घंटा एक घंटे बाद ये हमसे अपना कार्य करे, मैं अपना कार्य करूं। लेकिन बाबा इतना प्यारा है जो हर वक्त कहता है तुम मुझे अपना बोझ दे दो, बच्चे तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूं ना। तो ऐसा प्यारा बाबा हमें मिला जो कि शायद हम लोगों ने पता नहीं कौन सा जन्म का कौन सा पुण्य होगा जो बाबा ने हमें अपनाया। तो ऐसे प्यारे बाबा के लिए हम दिलो जान से उनके सारे बच्चे आत्माओं को सुख शांति प्रेम और जो ज्ञान मिला है उनको लेकर के विश्व की सर्व आत्माओं को, सब प्रकृति को दें, क्योंकि वो हमें बे इंतहा दिन रात दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं तो हमें भी देना चाहिए। और कब तक हम लेते रहेंगे? प्रकृति से भी हमने आज तक वायु से वायु ग्रहण की बिना किसी पैसे के, भगवान ने जल दिया उसको हमने तो बांट दिया, लेकिन वो जल कितना एक एक कीमती है, हम करोड़ों के रुपयों के लिए भागते रहते हैं दिन रात। आप सोचिए कि अगर आप राजस्थान में जा रहे हैं, आपने अरबों रुपया कमा लिया और उसके बाद आप वहां जा रहे हैं और दूर दूर तक पानी नहीं है और आपको प्यास लगी, आप मशक लेकर कोई आ रहा है उसने कहा भाई पानी दोगे, तो उन्होंने कहा 5 रुपए में दे दो पानी, उन्हें 5 में नहीं मिलेगा, 10 में नहीं मिलेगा। फिर एक स्थिति आती, अच्छा आधा धन ले लो, अच्छा जब बिल्कुल प्राण बिल्कुल उस पर आ जाते हैं तो सोचते हैं अच्छा तुम सब ले लो पर मुझे पानी दे दो ताकि मेरी जान बच जाए। तो उस परम पिता परमात्मा ने हमें वो नायाब चीजें दी हैं, बेशुमार बिना पैसे के दी हैं, तो हमारा भी समर्पण कितना उनके प्रति होना चाहिए। तो इस भट्टी में आकर के उस परम पिता परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चों, प्यारी प्यारी आत्माओं, बस यही है कि उसके लिए लवलीन हो जाओ और विश्व की सर्व आत्माओं को सुख शांति प्रेम दीजिए। यही भट्टी का मेरा समझ में जो है बस यही सार्थकता है आपके जीवन की। ओम शांति।
ये कहाँ से माता जी है? आप बरेली से? आप कहाँ से
है?
हांसी से।
ओम शांति। कुछ दिन पहले ही मन में, हांसी में ही मन में ये संकल्प चलता था कि मैंने इस बार भट्टी में जाना है और गहरा अनुभव करके आना है, मैं जहां जा रहा हूं वहां से सफल होकर लौटूंगा। उसके लिए बाबा की मुरली से मैंने 4 बातों पर विशेष अटेंशन दिया। अक्सर बाबा हमें मुरली में कहते हैं बाप, टीचर, सतगुरु, और चौथा मैंने उसमें जोड़ा साजन। इसके ऊपर जो मेरा विचार चला, बाबा के रूप में, भगवान के रूप में, पिता के रूप में उसकी क्या आज्ञा है, मैं उसका आज्ञाकारी बच्चा हूं। बाबा की आज्ञा है कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद कर, तो मैं गारंटी करता हूं आपके सारे पाप, आपके सारे बोझ खत्म कर दूंगा। सेकंड, टीचर के रूप में बाबा हम बच्चों को जो पढ़ा रहा है उसको मैंने अपने जीवन में पूरी ईमानदारी से पढ़ना है। जो बाबा टीचर के रूप में हम बच्चों को होमवर्क देता है, क्या उसके ऊपर मेरा अटेंशन जाता है? तो टीचर के रूप में ईमानदारी, सतगुरु के रूप में बाबा ने हम बच्चों को जो वरदान दिए हैं उसके ऊपर अटूट दृढ़ निश्चय कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, भगवान ने मेरे भाग्य में पहले ही सफलता लिख दी है तो सफलता क्यों नहीं होगी। चौथा, साजन की मैं सजनी वफादार के रूप में रहूंगी, भगवान से लेना है और सभी आत्माओं को मैंने देना है। तो आज अमृत वेले जब मैंने योग किया तो मैंने खुद को कृष्ण के रूप में, जैसे कि श्री बाबा कृष्ण का रूप देखते थे, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार हुआ। काफी देर मैंने वहां का सैर किया कि ऐसे सतयुग होगा, बिल्कुल स्पष्ट साफ मुझे दिखाई दे रहा था। ओम शांति।
और कोई सुनाए? बस पूरा करते हैं। और कोई सुनाएगा? भाई एक हाथ उठा रहे, आज लास्ट अमृत वेला तो करेंगे ना सभी, इसलिए टाइम पर छुट्टी करेंगे। बैठे रहो, पांच मिनट बैठे रहो, बस पांच मिनट में पूरा कर देंगे।
ओम शांति, ओम शांति। सभी ब्राह्मण बच्चे चमकती हुई मणि है। भाई जी ने अब ये कहा कि भी भट्टी में आने से कोई नई चीज हुई, अपना अनुभव बताओ। तो उसी लिए मेरा विचार चल रहा था, मैं सोच रहा था टाइम भी ज्यादा हो रहा है और भाई भी बोल रहे हैं तो शायद नहीं शेयर कर पाऊंगा। अभी भट्टी की क्लास में मुझे पता चला कि फीलिंग्स से हम कैसे बाबा से दूर हो जाते हैं। उनमें से मैं भी वो आत्मा हूं। दिसंबर माह में दादी जानकी जी यहां से आए थे, नए भवन का उद्घाटन होना था। तो उस भवन के उद्घाटन के दौरान, क्योंकि मैं कच्ची आत्मा, नया बाबा का बच्चा, 5 साल का छोटा सा, तो थोड़े से अनुभव होते हैं। मेरे साथ भी एक घटना ऊपर नीचे हुई और मेरे मन में ये आया कि बेकार आता यहां, आना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद मैं मुरली क्लास में जाना बंद कर दिया। मुरली करता था, नेट पे, टीवी पे, मोबाइल पे, ऐसे मैंने मुरली करना शुरू रखा, लेकिन सेंटर जाना बंद कर दिया। तो बड़े दीदी ने पूछा, भाई मुरली में नहीं आता? मैंने कहा दीदी आऊंगा। फिर मुझे यहां से पता चला कि मैं भी भोग खाने वाली आत्मा होगी, वीरवार को जाऊं और इतवार को जाऊं, बाकी दिन नहीं जाऊं। तो योग भट्टी से मुझे ये अनुभव हुआ कि भी मुरली की महत्ता क्या है, मुरली क्या चीज है, कितनी बार मुरली पढ़नी चाहिए, मुरली पढ़ने से क्या बदलाव होता है, चेक एंड चेंज की क्या चीज है, क्या चेक करना है। तो उस फीलिंग से अभी यहां आने तक भी मेरे मन में ऐसा ही रहता था, मैं कम जाता था सेंटर में कहने के बावजूद भी। लेकिन हां, बड़े दीदी का कोई भी संदेश मिले तो उसको मैं बड़े उमंग उत्साह से करता, आगे भी कर रहा था, अभी भी कर रहा था, उसमें कोई गुस्ताखी नहीं थी। लेकिन मेरे मन में ये था कि जब इतनी अच्छी अच्छी बहनें चल रही हैं, अब मुझे ये समझ में आ गया वो भी आत्मा है, वो भी पुरुषार्थी है, उनका भी पार्ट है, तो उनका पार्ट और मेरा पार्ट उसको मैं समझूं और समझ के मेरा जो पुरुषार्थ है उसको मैं क्यों छोड़ूं। तो मुझे ये अभी इस भट्टी से ये बात पक्की हुई कि भी मुझे तो खुद को ही बदलना है, और खुद को बदलूंगा तो सहयोग मिलेगा, और लोगों से अपेक्षाएं करूंगा, दूसरी आत्माओं से अपेक्षा करूंगा तो फीलिंग्स में आऊंगा तो मेरा ही नुकसान होगा। तो मुझे ये अनुभव हुआ है, मुरली की महत्ता पता चली है, और जो एक दूसरी आत्माओं के व्यवहार से जो फीलिंग्स हम करते हैं और फीलिंग्स की वजह से जो नुकसान होता है वो मुझे आज समझ में आया भट्टी में आने से। ओम शांति।
ओम शांति। ऐसे हर आत्मा के स्व परिवर्तन के सुंदर अनुभव है। रवि भाई साहब ने जो हमें बहुत पक्का किया कि आगे और परिवर्तन के लिए, उन्नति के लिए हमें कैसे दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ना है, बस यही प्यारे बाबा के लिए सबसे बड़ा उपहार है कि हम दृढ़ संकल्प से, बेहद वैराग्य से स्वयं को बदले। तो भाई साहब ने हमें बहुत सुंदर मार्गदर्शन दिया। भाई साहब का भी बहुत बहुत दिल से दुआओं भरा हार्दिक धन्यवाद है, धन्यवाद है। आप सबके लिए छोटी सी सूचना है कि जो भट्टी का बैच आप सबके पास है, तो कल मुरली क्लास के बाद ये बैच जो अंदर लिखत वाला कागज है ना, वो आप निकाल के अपने पास रख लेना, और जो माला है वो आवास निवास विभाग में जमा करा देंगे, तो दूसरी भट्टी में भी उसका उपयोग हो सकता है। अंदर का कागज आप रख लेना और जो माला है वो आवास निवास विभाग में जमा कराने। बहुत अच्छी बात है ना, हम सभी प्यारे बाबा को याद करेंगे, भाई साहब से दृष्टि लेंगे 3 मिनट सभी पावरफुल।
बदली हमारी किस्मत पाके प्यार।